તારીખ 27/12/1995 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ઈડરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 150
નંબર છે બેન છે જ્ઞાનીની પરિણતિ સહજ હોય છે એ જ્ઞાનનો વિષય છે પ્રસંગે પ્રસંગે વેદ જ્ઞાનને યાદ કરીને તેમને ગોખવું પડતું નથી અંતર સાવધાની પ્રયત્ન સાધ્ય છે એ અંતર સાવધાનીમાં પોતે સાવધાન છે પોતાના સ્વરૂપમાં હું આત્મા છું જ્ઞાન તત્વ છું ચૈતન્ય સ્વરૂપે છું પણ એવું એને ગોખવું પડતું નથી ગોખવું પડતું નથી એનો અર્થ એમ નથી કે અંતર સાવધાની નથી અંતર સાવધાની છે ત્યાં પુરુષાર્થ પણ છે અને પુરુષાર્થ બી સહજ હે અંતર સાવધાની બી સહેજ હે લેકિન સ્મરણ કરના પડે રટન કરના પડે તો ભેદ જ્ઞાન ચલે એસા નહીં હૈ પરંતુ ઉસકો તો એસા સહજ પરિણમન હી હો ગયા હોતા હૈ ઓર આત્મા મેં એક ધારાવાહી આત્મા મેં એક ધારાવાહી પરિણમન વર્તતા હી કરતા હૈ વર્તતા હી કહેતા હૈ એસે જ્ઞાને કો ભેદ જ્ઞાન સહેજ હૈ ભેદ જ્ઞાન કા વિષય મેં 3 નંબર કા વચનામૃત હૈ શરૂ મેં એસે ભેદ જ્ઞાન કે ઓર ભી વચનામૃત તો હૈ નંબર મુજે યાદ નહીં હૈ મેરે પ્રયત્ન મેં તો સબ નોંધ કિયા હૈ મેં લાયા નહીં
92 જિસ વક્ત જ્ઞાની કી પરિણતિ 292 બહાર દિખતી હૈ જિસ વક્ત જ્ઞાની કી પરિણતિ બહાર દિખતી હૈ વહી ઉસી વક્ત ઉસે નાયક જુદા વર્તતા હૈ મેં નાયક તત્વ હું એસા અનુભવન પરિણમન ભિન્ન વર્તતા હૈ જૈસે દૃષ્ટાંત દિયા હૈ કે કિસી કો પડોસી કે સાથ બહોત મિત્રતા હો સ્નેહ હો મિત્રતા મેને બહોત સ્નેહ હો તો ઉસકે ઘરે જાના આના ઉસકા ઇસ કારણ સે રહેતા હો પરંતુ ઇતના સ્નેહ હોને પર ભી પડોસી કો પડોશી મેં વો અપનાપન માન લેતા નહીં ઓર પડોશી કી કોઈ ઘર કી ચીજ કો ભી અપની ચીજ માનતા નહીં સ્નેહ કે વસાત વો વૈસા બોલેગા કે આઈએ યે તો આપકા હી ઘર હૈ હમારા આપકા કહાં અલગ હૈ લેને દેને ચીજ કા લેને દેને મેં હિસાબ કિતાબ ભી નહીં કરતા હું કોઈ હમારે યહાં ચીજ લાયે થે તો સાથ મેં આપકી ભી લે આયે જૈસે बगल बगल में रहते हैं, सुबह निकले वही गरम गरम जलेबी गांठिया बनता है, तो घरे नाश्ता माटे ले दी, तो डबल पड़ीका बनता है, एक बाजू ना घरे मोकली दी, तो हम हमारे खाने को लाया था, आपके बाजू में ले आए, हिसाब किताब नहीं करेंगे। इतना स्नेह से बोले कि ये तो आपका ही घर है, कोई भी चीज जो तो आपकी समझ के ले जाना है, लेकिन बिना पूछे इसके घर में से कोई चीज अपने घर में ले जाएगा नहीं। ले जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। वैसे ज्ञानी को विभाव में कभी एकत्व परिणमन नहीं होता, चाहे भक्ति करे, उत्साह से भक्ति करे। दृढ़ दृष्टि प्रकाश में सुगनी जी ने दृष्टांत लिया है, भगवान का जब जन्मोत्सव होता है, भगवान तीर्थंकर देव का जन्म होता है, एक एक इंद्र का आयु इतना बड़ा होता है कि कितने ही तीर्थंकर का जन्म उत्सव मनाने का उनको प्रसंग बनता है, और उसको बोला जाता है कि उसका ऐसा सौभाग्य है कि अनेक तीर्थंकरों का जन्म कल्याण को मनाता है, अनेकानेक, एक दो चार पांच नहीं, अनेकानेक। क्योंकि महाविद्या में भी बहुत होते हैं और भरत में तो 24 होता है, महाविद्या में तो बहुत होते हैं। तो उस वक्त तो पैर में घुंघरू बांध करके नाचता है भगवान के सामने, बाल तीर्थंकर के वितरागता इसके उसमें दिखती है, तीर्थंकर बाल्य अवस्था में है, लेकिन तीन ज्ञान लेके मां के पेट में आए हैं, तो उनके बाद बचपन में भी उसमें वितरागता दिखती है परिणमन में, जो पैर में घुंघरू बांध कर नाचता है, वो खुद समय दृष्टि है। उन्होंने ऐसा लिया है सुगानी जी ने कि लोगों को ऐसा लगेगा आ हा हा, इंद्र का उत्साह समाता नहीं, क्या कितना उत्साह से नाचता है, लेकिन अंदर में ये शुभ भाव को दुख भाव जानता है, ऐसा लिखा है। क्यों? तो विज्ञान चलता है अंदर में, विज्ञान चलता है। ऐसे ऐसे बहुत सी बातें लिखी है। वैसे ज्ञानी को विभाव में कभी एकत्व परिणमन नहीं होता, ज्ञानी सदा कमलवत निर्लेप रहता है, कमल के पत्रवत, हाँ, वो 24 घंटा पानी में रहता है, कोरा का कोरा, दूर से देखो तो पानी में डूबा हुआ है, समीप से देखो तो पानी को छुआ भी नहीं है। ऐसे विभाव से भिन्न पने ऊपर तीरते तीरते रहते हैं, विभाव के साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का विषय दिया है, यद्यपि दृष्टि अपेक्षा से साधक को किसी भी पर्याय का या गुण भेद का स्वीकार नहीं है, दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञानी को किसी भी पर्याय का, मैंने दृष्टि जो है वो तो अपने परमात्मा तत्व को ही अपने रूप में स्वीकार कर लेते हैं, श्रद्धा, इसलिए उसका विषय न कोई पर्याय है, उसका विषय न कोई गुण भेद है। ऐसा होने पर भी उनको स्वरूप में जम जाने की भावना तो वर्तती है, बस मैं स्वरूप में जमा रहा हूं। क्यों? कि स्वरूप में जमने से बहुत शांति मिलती है, बस जमे रहूं मैं, निकलू ही नहीं, ऐसी भावना उनको वर्तती है। वो श्रीधाले में सौरत राम जी ने गाया कि राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये। तो राग है वो आग है, आग जैसी बात है, उसका दाह लगता है। तो उनकी दृष्टि भले ही पर्याय को स्वीकारती नहीं है, पर्याय को विषय नहीं करती श्रद्धा, लेकिन भावना में पर्याय विषय भावना होती है, मैं स्वरूप में जम जाऊं, अपूर्व अवसर ऐसा कभी आएगा। रागांश रूप बहिर्मुखता उसको दुख रूप से वेदन में आती है। जो राग का अंश है, पूरा राग नहीं होता है चारित्र गुण में, आंशिक वितरागता हो गई है और आंशिक राग चलता है, वो राग अंश उसमें बहिर्मुखता है। तो बाबू जो राग का अंश है दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें उसको दुख वेदन में आता है, है। और वितरागता अंशरूप अंतर्मुखता, जितना अंतर्मुखता है वो अंतर्मुख परिणति में वितरागता है और उसमें सुख शांति सुख रूप वेदन में आता है। जो आंशिक बहिर्मुख वृत्ति वर्तती होती है उससे साधक न्यारा और न्यारा ही रहता है, वो परिणति से वो भिन्न रहता है, मेरा स्वरूप ये नहीं है, क्योंकि वहां से उसका अस्तित्व उठ गया है। मुमुक्षु की भूमिका में विज्ञान करता था तो वो अस्तित्व उठाने का प्रयास था, अपने में अस्तित्व स्थापने का प्रयास था और उसमें अस्तित्व उठाने का प्रयास था। ज्ञान दशा में तो अस्तित्व उठ गया है, उसका अस्तित्व है ही नहीं, लगता ही नहीं, अस्तित्व वहां से खिसक गया है। इसलिए वो न्यारा के न्यारा रहता है बहिर्मुख अंश से। आंख में जैसे हिंदी में कणा ने हूं कैसे बारीक होता है, तिनका आंख में जैसे तिनका का टुकड़ा, बहुत बारीक टुकड़ा हमारे कणों कैसे न समाता है, पिंच करता है, वैसे चैतन्य परिणति में विभाव नहीं समाता, मैं भी नहीं खाता उसका, वो परिणति भिन्न, वो परिणति भिन्न, वो मशीनरी में आता है ना विंच इन गियर, गियर व्हील होता है तो उसका यहाँ आका होता है, ऐसे होता है तो एक ऐसे घूमता है, दूसरा ऐसे घूमता है, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। ऐसे ज्ञानी के परिणाम में बहिर्मुख अंश ऐसे जाता है बाहर, एक अंश अंदर जाता है, एक साथ दोनों एक परिणाम के दो विभाग हो जाते हैं, वो बाहर जाता है ये अंदर जाता है। ऐसा प्रयास मुमुक्ष उस तरह का प्रयास करता है, अहम भाव स्थापित करने का पुरुषार्थ उसका चलता है, बार बार उसको निषेध आता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका प्रयास चलता है। ऐसे चैतन्य परिणति में विभाव नहीं समाता। जो साधक को बाहर में मैंने प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के राग में, यदि साधक को दुख नहीं लगे और अंदर में वितरागता में सुख न लगे तो अंदर कैसे जाएगा वो? तो अंदर में जाने का उसका कैसे सहज बनेगा? बाहर में दुख लगेगा तो सहज हटेगा, और अंदर में सुख लगेगा तो सहज अंदर का खिंचाव रहेगा। दुख से दिशा दी बात है। विकल्प मात्र, सूक्ष्म हो स्थूल हो कोई भी हो, विकल्प मात्र वो विकल्प भी आकुलता रूप है। उसको चुम्बन लहंगा थमाया कि नहीं आया था। श्रुत ज्ञान के विकल्प रूप बुद्धि आकुलता को पैदा करना रही मैंने करने वाली है, उसमें भी आकुलता है। हाँ, वमित कर देता है वो। कौतर का थम आया ना, विकल्प का वमन हो जाता है, बाहर फेंकता है। माता जिसको ऐसे सूक्ष्म विकल्प से भी हटने की तैयारी हो जाती है अंदर में, तभी वो निर्विकल्प हो सकता है। जहाँ तक उसको स्वरूप का विकल्प भी सुहाता है वहाँ तक विकल्प से छूटेगा उसको तो नई पक्ष कहा है, उसको नई पक्ष कहा है। उसे हट गया तो निर्विकल्प हो गया। अगर बाहर में दुख नहीं लगेगा और अंदर में सुख नहीं लगे तो अंदर कैसे जाता है? शास्त्र में तो कहीं राग के विषय में राग आग दहे ऐसा भी कहा है, कहीं प्रशस्त राग को विष कुंभ भी कहा है। समय सार के वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में विष कुंभ कहा है। चाहे जैसी भाषा में कहा हो, सर्वत्र आशय एक ही है, सर्वत्र अभिप्राय तो एक ही है कि विभाव का अंश वह दुख रूप है। विभाव में दुख है और है। भले ऊंचा मां ऊंचा कोटि के शुभ भाव रूप या अति सूक्ष्म राग रूप प्रवृत्ति हो तो भी जितनी प्रवृत्ति उतनी आकुलता है। बहुत स्पष्ट बात है। और जितना निवृत्त होकर के स्वरूप में लीन हुआ उतनी शांति और उतना स्वरूप आनंद है। स्पष्ट बात है। સ્થિતિ આવે ત્યારે જ્ઞાન દિશા આવવાની તૈયારી થઈ છે એમ। यह जो बाहर का लोक है उससे चैतन्य लोक जुदा ही है। चैतन्य पिंड चैतन्य लोक है। बाहर में जो लोक है वो लोक अलग है, अंदर में आत्मा को चैतन्य लोक में कहता है कि लोक्यन्ते इति लोकः, लोक्यन्ते मैंने जो जानता है इसलिए उसको लोक कहते हैं, प्रकाश प्रकाश मान होता है इसलिए लोक कहते हैं। बाहर में लोग देखें कि उसने ऐसा किया ऐसा किया, लोग ज्ञानी पे भी आरोप लगाते हैं कि भाई ऐसा किया आपने, ऐसा किया आपने, ऐसा किया, कुछ भी काम करते हो बाहर के कार्य भी वो देखे होते हैं, परंतु अंदर में ज्ञानी कहाँ रहता है और क्या करता है ये ज्ञानी खुद ही जानता है। बाहर वाले को अंदाजा था वो भीतर में कहाँ चला गया, कितना ऊंडा गहरा चला गया वो खुद जानता है, दूसरे को पता नहीं पड़ता है वो तो किधर गया कितना गया कहाँ चलने का था। अंदर में ज्ञानी कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं ये ज्ञानी खुद ही स्वयं ही जानता है। बाहर से देखने वाले मनुष्य को ज्ञानी बाहर में कुछ क्रिया करने करते हुए या विकल्प में जुड़ा जुड़ते हुए दिखता है, परंतु अंदर में तो वे कहीं ऊंडे चैतन्य लोक में विचरते होते हैं, वो कहीं अंदर में उसकी विचरना अलग है, कहीं न कहीं चले जाते हैं। लोगों को बात समझ में आती है वो परिणमन किस जाति का और किस प्रकार का होता है वही समझ में नहीं आए तो वो बात उनको कैसे समझ में आएगी, और ज्ञानी वो जानते हैं कि वो बात समझ में तो आएगी नहीं, तो अपने में मस्त रहते हैं। इसलिए वो वचन अमृत में लिए हैं कि बाहर में तो सब परदेश ही परदेश लगता है, अंदर में हमारा स्वदेश है, तो बाहर आते ही लगता है कि हम कहाँ आ गए परदेश में, सब अनजाने हैं। कैसे हैं सब अनजाने हैं, यहाँ हमारा कोई नहीं है क्योंकि कहीं अपनापन होता नहीं, तो यहाँ हमारा कोई नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी में अपनत्व करता है वो तो उनका है कि नहीं है, कि नहीं है वो मानते हैं कि मेरा है, खुद मानते हैं तो कहीं अपनापन लगता नहीं करते नहीं। गुरुदेव प्रत्यय ने तो गुरुदेव प्रत्यय तो बहुमान भाव आ गए वो तो स्वाभाविक है।
कृपालु जी मतलब कौन सी कक्षा का है कि हमको मुक्ति अपने लगते हैं इस पत्रांग में कहा है और ज्ञानी अपने लगते हैं।
हाँ वो आता है 491 में आवे से वहाँ पर
बहुत कुछ कहा है,
कोई बात है दोनों की एक ही बात है, बहन श्री तो कृपाल जी के दोनों की एक ही बात है।
बस तो और
तो कहने की बात होती तो कह देते वो भी उतनी बात है कि ऊंडे ऊंडे जाता है, विदिन का विषय तीव्र होता है तो उसका ऊंडे ऊंडे बोलते हैं, नहीं बोलते उनको बहुत वेदना होती है तो क्या बोलेगा कि मेरा जीव बहुत ऊंडा उतर जाता है। ऊंडा उतर जाता मतलब क्या, वेदना बढ़ गई है। अनुभव का विषय बिना अनुभव समझा जाता नहीं, खाने की चीज बिना खाए समझ में आती कल्पना हो जाएगी। भूख नहीं है और होता है, उसको कहते हैं जिज्ञासा, स्वरूप की पिपासा। पिपासा होती है तो उपयोग सूक्ष्म होकर के काम करता है। मति श्रुत ज्ञान में ऐसी शक्ति है, भले ही दिखाने वाला पूरा दिखा सकते नहीं, संकेत मात्र दिखाते हैं, लेकिन उस संकेत पर से पूरी पकड़ने की ताकत मति श्रुत ज्ञान में है। पूरी बात पकड़ लेने वाला पकड़ लेता है, ये शक्ति है, योग्यता चाहिए। दूसरों श्लोक में कहते हैं, संसार से खरेखर थका हुआ को ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। संसार में रुचि भी हो और सम्यक दर्शन भी हो जाए, वो बात बनने वाली संसार से पूरा पूरा जो थक गया हो उसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जिसको कुछ सुहाता हो उनको उपयोग वहां से हटेगा कैसे, बाहर से छुटकर अंदर आएगा कैसे, आएगा नहीं। वस्तु का महिमा बराबर ख्याल में आने के बाद वह संसार से उतना ज्यादा थक जाता है कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, एक निजात्म द्रव्य ही चाहिए। क्या कब, जब स्वरूप का भाव भाषण होता है उसको कहते हैं ख्याल। तो महिमावंत है तो उतना ही महिमा उसको ख्याल में आता है, इतना महान पदार्थ मैं हूं फिर मुझे क्या चाहिए, संसार में तो कोई ऐसी चीज नहीं है तो मुझे चाहिए इसके आगे। और संसार के पदार्थ की चाहना में मैं ऐसा मेरा स्वरूप को खोना चाहता नहीं हूं, कौन तैयार होगा। वस्तु की महिमा बराबर ख्याल में आने के बाद वह संसार से उतना ज्यादा थक जाता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, एक निज आत्मद्रव्य निज स्वरूप ही चाहिए मुझे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ऐसे दृढ़ता के साथ बस द्रव्य वही मैं हूं, चैतन्य दल ज्ञान दल वही मैं हूं, इस भाव में वो परिणम जाता है, उस भाव में प्रण जाता है और बाकी का सब निकाल देता है। बाकी ने बुद्धू खड़े ना खाए, एक आत्मा रूप थी ने बाकी ने बुद्धू खड़े ना खाए, पोता पने कई पछी पुरावा देता नहीं। भेद को स्वीकारती नहीं, गुण भेद पर्याय भेद धर्म भेद एक भी भेद को दृष्टि स्वीकारती
नहीं है।
शाश्वत द्रव पर टिकी हुई दृष्टि, चौंती हुई दृष्टि, शाश्वत द्रव पर वो चिपक गई है, शाश्वत द्रव पर चिपकी हुई दृष्टि, टिकी हुई दृष्टि, मुझे सम्यक दर्शन हुआ है या मुझे केवल ज्ञान हुआ है कि नहीं, सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, ऐसे देखने को भी बैठती ही रुकती नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया, अनुभव हो गया कि नहीं हो गया, केवल ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, वो दृष्टि देखने को रुकती ही, वो तो अपना परमात्मा द्रव्य के साथ चिपकी हुई रहती है, वहां से छूटती नहीं ना, और वहां उतनी चिपकती है कि दूसरा कुछ देखती नहीं। एक न्याय से कहे कि वो अंधी हो गई है, और एक न्याय से कहे कि देखती है तो अपने एक परमात्मा के सिवा दूसरे को
नहीं देखती,
देखती नहीं, और वो परमात्मा उतना सुंदर है कि उसको छोड़कर वो क्यों दूसरे को देखे। समुश्रण में भी ऐसा है, समुश्रण में भी ऐसा है, भगवान जो है सर्वांग सुंदर होते, शरीर से भी सुंदर होते, एक एक अंग उपांग इतने सुंदर नमने, कि देखने वाले को नजर हटाने का मन नहीं होवे, और देखत तृप्ति न हो ये विमल जिन, विमल जिन के आत्मन में आता है कि नहीं, देखत तृप्ति न हो, विमल जी ने देख
देख
अमीय भरी मूर्ति रीति उपमान घटे कोई पछे आवे है, शांत सुधार से झील थी निरखत तृप्त न होए विमल जी ने दिठा लो आज। अपने पंकज भाई गाड़ी में खाता मुक्या, गाड़ी में ट्रेवलिंग में हमने आवाज मन थी इंदुबेन गाय से अमृत भरली, अमृत की मूर्ति आखे सतोड़ी, अमृत ने नारियली निरखत तृप्ति न हो, निरखा तृप्ति न थाय, भूख तरस ने कोई लागे नहीं, समस्या में कोई खावा उठे नहीं, अरे कोई हाजिर देवा उठे नहीं, कोई ने ऊंघा नहीं, अरे धोखा खाई जाए नहीं, कोई ने ऊंघ न आवे, ન કોઈને ખાવા જવાનું મન થાય, ન કોઈને પાણી પીવા જવાનું મન થાય, ન કોઈને ક્યાંય ચોંટી જ જાય, ઉખડી ન શકે, ભગવાન કા સ્વરૂપ એસા હૈ, ભગવાન કા દેહ કા દીદાર એસા હૈ, ભાઈ દ્રષ્ટિ રહેગી, દેહ કો દેખા આત્મા કો
નહીં દેખા,
નહીં દેખા, ये तो ज्ञानी कहते हैं कि अमृत भरी हुई मूर्ति निर्खत तृप्ति न हो, शांत सुधार से जीलती, अमृत रस है, जमता है, नितरता है, हाँ जन्मे त्यारे होते हैं, आ तो पी परम उदारिक शरीर हो, तो उदारिक शरीर हो जन्मे त्यारे, तो સ્વરૂપમાં બહુ હોય છે પચપનથી, આ તો પછી સમોસરણ તો આખા પૂતગળ બદલાઈ જાય શરીરના, પરમોદારી શરીર થઈ જાય, ટ્રાન્સપેરન્ટ એકદમ ફટી જેવું, કલર ગમે તે હોય, કલર શામ બી હોય, રક્તા બે સાંભળા, ચોવીસમાં બે લાલ હોય ને બે સાંભળા હોય, સાંભળા એટલે કાળા, કૃષ્ણ જે હતા ભગવાન, હા નેમનાથ ભગવાન હતા ને, घनिष्ठ काला रंग पर प्रकाश तरह तो रक्ता दो सांवरा पीला चकला हो सुवर्ण रंगो आवश्यक आपको पता है मैं चौबीस तीर्थन करना रंग बताया मरगज पन्ना दोई जी पन्ना ना रंग ना बे हो नीला रंग ना तो कहते हैं कि वो दृष्टि है इतनी चिपकती है कि वो देखती नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ या केवल ज्ञान हुआ ऐसा नहीं देखती है। उसे ग्रह दृष्टि वाला जीव को पता है ज्ञान में खबर है कि अनंत काल में अनंत जीवों ने ऐसे इस प्रकार से ही द्रव पर दृष्टि स्थापित करके अनंत विभूति प्रकट किया है अनंत गुणों की विभूति दृष्टि स्थापित है तो विभूति प्रकट हुई है दृष्टि नहीं स्थापित तो कोई विभूति प्रकट नहीं होती अनंत गुणों के जो वैभव है वो दृष्टि स्थापने से स्वतः प्रकट होता है ऐसा अनंत जीवों ने किया है। द्रव दृष्टि होती है तो फिर बाद में द्रव में जो जो होता है वो प्रकट होता ही है फिर भी मुझे सम्यक दर्शन हुआ मुझे सहानुभूति भी ऐसे दृष्टि पर्याय में चौंटती चिपकती नहीं है दृष्टि नहीं चिपकती अपूर्व आनंद आएगा कैसा कभी पूर्व नहीं आया ऐसा प्रकृति में पहला अपूर्व आनंद आएगा दृष्टि नहीं देखेगी ज्ञान में मालूम पड़ेगा दृष्टि देखेगी क्योंकि उसको तो इससे अनंत आनंद का नाथ उसको चिपक गई है ये तो जघन्य आनंद है पर्याय वाला तो उसके साथ वो रहती है अनंत शांति के पिंड के साथ रहती है तो यहाँ से छूटकर और कहीं जाने का उसका होता नहीं है। यह तो प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक सबको निकाल देती है और द्रव्य पर ही स्थापित रहती है खपी हुई सबकी हुई रहती है। कोई भी जात की कोई भी प्रकार की आशा बिना दृष्टि को फिर अपेक्षा ही कोई नहीं किसकी अपेक्षा रखे वो पूर्ण परमात्मा मिल गया अपेक्षा किसकी करे किसी भी प्रकार की आशा अपेक्षा बिना तद्दन 100% निष्प्रभावित भाव से ही दृष्टि प्रकट होती है। दृष्टि का परिणाम कैसा होता है वो ज्ञान दशा में सम्यक दर्शन का परिणाम कैसा होता है दृष्टि माने सम्यक दर्शन का परिणाम कैसा होता है तो उसमें वर्णन किया है। वैसे दृष्टि के बोर बहुत आते हैं सब प्रकार के लिए हैं ज्ञान प्रधानता वाले दृष्टि प्रधानता वाले पुरुषार्थ प्रधानता वाले मुनिराज के केवलियों के मुमुक्षों के तो बहुत लिए हैं मुमुक्षों को मार्गदर्शन मिले ऐसे तो बहुत से बात करते हैं उस विषय में अपने पास ये ग्रंथ अपने साहित्य में मुमुक्षों की भूमिका का बहुत बढ़िया है कोई शक नहीं।